ओम शांति। शैलू भाई ने सवा घंटे का क्लास एक छोटी सी कहानी में सुना दिया है ना। तो एक छोटी सी कहानी लेके शैलू भाई ने सेल्फ चेकिंग क्यों, क्या, कैसे और उसका रिजल्ट सब बता दिया। तो मुझे ये टॉपिक जो है स्व की चेकिंग, पिछले साल उसका महत्व पता चला, क्योंकि आपकी तरह मैं भी लॉकडाउन में थी। तो सबको याद होगा एंड ऑफ मार्च 2020 है ना, और ड्रामा अनुसार मैं यहाँ ज्ञान सरोवर आई हुई थी और यहाँ पे सेवा में तो आई थी, परंतु अभी अबू धाबी जहाँ पे मैं रहती हूँ यूजुअली, वहाँ वापस जाने का ऑब्वियसली रास्ता बंद था। इंडिया के बॉर्डर्स बंद और वहाँ पे दुबई अबू धाबी के बॉर्डर्स भी बंद। तो शुरू में तो लगा अरे वाह, यहाँ रहने का इतना सौभाग्य है ना, मधुबन में किसको चांस मिलता है, वो भी अपनी सेवा या घर पे रहते हो तो उसमें भी लाइफ बिजी तो रहती है, तो लगा बहुत अच्छा है, बैठ के आराम से यहाँ तपस्या करेंगे, योग करेंगे। तो शुरू में तो बहुत ही उमंग उत्साह से मैं रह गई। फिर एक महीना बीता, दूसरा महीना बीता, फिर पता चला लॉकडाउन क्या है। तो ये टॉपिक का महत्व आजकल के दिनों में बहुत बहुत जरूरी है, उसको समझना कि ड्रामा ने हमको ये टाइम क्यों दिया है। 2020 और 2021 दो साल है, अगले साल क्या होगा वो तो बाबा ही जानता है, पर ये साल मुझे तो ऐसे फील होता है कि ब्राह्मणों को खास एक छोटा सा जैसे समय मिल गया है, स्पेशल समय, एक्स्ट्रा टाइम। किसके लिए? अपनी स्टेज को, अंदर की जो स्थिति है उसको देख के उसको थोड़ा सा और ऊपर उठाने के लिए। वैसे तो आप बहुत साल से ज्ञान में होंगे और आपको मालूम ही है कि बाबा ने हमको फोर सब्जेक्ट्स दिए हैं। मेन फोर सब्जेक्ट्स तो है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसको सबको मालूम है, छोटे बच्चे को भी पता होता है, परंतु इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहूंगी और वो है स्व की चेकिंग। क्योंकि पहला टॉपिक जो ज्ञान है, हम आते हैं बाबा के पास में, 7 दिन का कोर्स करते हैं तो हमको एक पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, बेसिक ज्ञान। उसके बाद मुरली शुरू होती है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, और रोज रोज मुरली सुनते हैं और ये तो बाबा का नियम है कि रोज मुरली तो सुनना ही है। परंतु अगर हम मुरली सुने और फिर दरवाजे से, सेंटर से निकल गए, अपने दिनचर्या में लग गए, अगर हमने अपने को थोड़ा सा रोक के चेक नहीं किया पूरे दिन में कर्म करते हुए, तो क्या लाइफ में कुछ चेंज आ सकती है ज्ञान के बेसिस पे? देखो, दुनिया में भगत या कोई नास्तिक भी हो, वो भी जानते हैं कि मेरे अंदर ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ये नुक्स है, ये तो सब जानते हैं। मेरे अंदर क्रोध है, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। तो हम भी जानते हैं अपने अंदर क्या क्या चेंज होने वाली चीजें हैं ना, क्या क्या आदतें अभी रही हुई है। तो क्या मुरली रोज रोज सुनने से वो चेंज होगा क्या? होगा? श्योर? नहीं होगा। सिर्फ मुरली सुन लो रोज और बाहर निकलो तो होगा? तो इसलिए मुरली सुनना एक फाउंडेशन है, और हर मुरली में हमको भगवान स्वयं चेकिंग के लिए पॉइंट्स देते हैं हमेशा। या तो हमारी प्रशंसा करते हैं बाबा कि तुम कौन थे, याद करो तुम कैसे थे, देवी देवताओं का वर्णन करते हैं बाबा। या तो बाबा कभी कभी हमको याद कराते हैं कि तुम मेरे पास आए क्यों, देखो तो से आप लोग कैसे हो अभी। और कभी कभी तो या तो मोह के ऊपर, या तो काम विकार के ऊपर, या तो क्रोध के ऊपर थोड़ा सा चिन्ह भी बताते हैं, है ना, कि ये है इशारे, अगर आप में है तो फिर थोड़ा ध्यान दो। तो एक चेकिंग मुरली के आधार पे होती है कि मैं मुरली सुनते सुनते ऐसे पॉइंट्स निकालूं जिनको लेके मैं सारे दिन में अपने आप को चेक कर सकती हूं। दूसरी चेकिंग होती है कामकाज में, डेली लाइफ में अपना व्यवहार देखते चलो, थोड़ा डिटैच होके, थोड़ा साक्षी होके देखो कि मेरे अंदर रिएक्शंस कब आते हैं। आप सभी जानते होंगे अपने लाइफ में कौन कौन लोग हैं जो हमारे बटन्स, इंग्लिश में कहते हैं बटन्स प्रेस करते हैं, मतलब थोड़ा हमको इरिटेट करते हैं। सबके लाइफ में दो चार लोग ऐसे हैं, है ना, मोस्टली हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं रोज रोज वही होंगे, या तो आपके मित्र होंगे, या तो अगर आप कॉलीग्स हैं, वर्क कॉलीग्स होंगे, या तो घर में भी हो सकता है। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं बहुत चतुर, उनको मालूम है हम ऐसे करेंगे तो मम्मी चिढ़ जाएगी, ऐसे करेंगे तो पापा को गुस्सा चढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जब मैं मिलती हूं तो मेरे अंदर किस टाइप का रिएक्शन पैदा होता है। कईयों को किसी किसी प्रकार के संस्कारों को देखकर रिएक्शन होता है, तो स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं होगा पर एक टाइप का संस्कार। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब देखती हूं कि कोई बड़ों की इज्जत नहीं करता है तो मुझे थोड़ा लगता है कि कैसे, क्यों ऐसे क्यों करते हैं। चलो ठीक है, आप, आपकी सिमिलर थिंकिंग नहीं है, आपकी ओपिनियन अलग है, पर कम से कम इज्जत तो दो ना। तो मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आता है। तो आप अपने को जानते हो क्या? आप अपनी चेकिंग करते हो? जब हम कहते हैं ओम शांति, तो इसका मतलब मेरा मन और मेरे मन के पीछे दो जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब मेरे संस्कार है, वो शांत है। जब कुछ रिएक्शन आता है तो उस शांति में ना थोड़ी मूवमेंट आती है। तो पहले मूवमेंट आती है अंदर, तो जैसे मैंने बताया ना, तो हम क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं। अगर वो मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हुआ तो चेहरे पे हम थोड़ा फेस वैसे करेंगे ना, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट हुआ तो कुछ बोल भी लेंगे, ज्यादा मूवमेंट हुआ तो रिएक्शन भी आ जाएगा. ज्ञान से पहले तो थप्पड़ भी मार लेते, अभी तो नहीं ना. गुस्सा चढ़ता. तो इसलिए अगर अपनी स्व चेकिंग करनी है तो अंदर का मूवमेंट चेक करो. कुछ होता है तो मेरे अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है. क्योंकि ज्ञान से पहले तो हम लोग अपने को बहुत जस्टिफाई करते थे, है ना. लॉयर बन के कहते थे कि नहीं, मैं इसलिए, मैंने इसलिए ये बोला क्योंकि उन्होंने ये बोला या उन्होंने वो किया, ये हुआ ना तो ही मेरा रिएक्शन ऐसे रहा. तो बाबा ने हमको क्या सिखाया है, ऐसे बहाने मत बनाओ, एक्सक्यूज़ मत दो. जिसने जो किया उसने किया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने जो जवाब दिया, चाहे आपने किसी व्यक्ति को जवाब दिया, चाहे आपने ड्रामा को जवाब दिया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके अंदर किसी के प्रति नफरत आए, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये भी फीलिंग आया कि आप गलत हो, मैं जो कह रही हूं वो राइट है, अभिमान, ये जो फीलिंग्स अंदर पैदा होती है ना, ये रिएक्शंस है. तो इनको कैच करना, इसको स्व चेकिंग कहेंगे, स्वयं की चेकिंग. तो एक हुआ मुरली के आधार पे, एक हुआ अपने आप को जस्ट रोज रोज साक्षी बनकर देखते रहना, वॉच करना. फिर अनदर टाइप ऑफ चेकिंग, हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, पहले तो ब्रह्मा बाबा थे, तो उनका व्यवहार देख के बहुत, उन्हें बहुत कुछ सीखा कि बाबा कैसे चलते थे, कैसे सब्जी काटते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, किस दृष्टि से लोगों को देखते थे, उनका रिस्पांस क्या रहता था जब कोई कुछ गलत भी करता था. तो अभी हमारे सामने फिर दादियां आई, अभी भी हमारे सामने कितने सीनियर्स हैं, वरिष्ठ भाई बहन हैं. तो एक चेकिंग वो होती है जब मैं अपना व्यवहार देखो और उनका रिस्पांस देखो. कभी कभी हम गलत नहीं कर रहे होते हैं पर हाईएस्ट रिस्पांस नहीं देते हैं. उनको देख के लगता है हाँ, उन्होंने न्यूट्रल रिस्पांस नहीं दिया, न्यूट्रल से भी ऊंचा रिस्पांस दिया. मुझे याद है जब 9/11 हुआ, आपको याद है September 11, 2001, जब ट्विन टावर्स में इतना, तो उस टाइम पे मैं समझती हूँ जानकी दादी ने एक मैसेज दिया था कि आप प्रार्थना करो, ये दुनिया के लिए ना मैसेज दिया था ब्रह्मा कुमारी की ओर से, प्रार्थना करो ना केवल उनके लिए जिन्होंने शरीर छोड़ा, जिनकी फैमिलीज फ्रेंड्स मित्र संबंधी इतने दुख में है, अशांत है, उनके लिए भी प्रार्थना करो जिन्होंने एक्चुअली ये प्लान किया, जो टेररिस्ट प्लेन पे बैठ के जिनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट थी, उन आत्माओं के लिए भी शुभ भावना शुभकामना भेजो. तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मैंने यहां तक तो सोच लिया था कि हाँ कईयों ने शरीर छोड़ा, कितने लोग दुख में होंगे, कितनों के अंदर भय पैदा हुआ, तो उनके लिए मैं बैठ के योग लगाती थी। जब दादी ने ये बोला कि जो जिन्होंने इसका पूरा प्लानिंग किया उनको भी शुभ भावना शुभकामना भेजो, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये क्यों? दादी ने तो संस्कार देखा ही नहीं ना, दादी ने आत्मा को देखा और ये याद किया कि ये भी मेरे भाई है बहन है, ये भी मेरा परिवार है। तो उस दिन जैसे मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऊपर की तरफ, एक एक्स्ट्रा स्टेप ऊपर की तरफ मेरी, आई फेल्ट कि मेरी उन्नति हुई, मेरी प्रोग्रेस हुई उस दिन। तो इसलिए बड़ों के साथ अपने को कंपेयर करना कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उस सिचुएशन में मैंने ऐसे किया, बाबा क्या करते अगर मेरे सिचुएशन में होते हैं। तो एक चेकिंग कंपैरिजन से होता है। तो तीन चेकिंग हो गए ना, चौथी बात, तो जब हम योग में बैठते हैं प्लेन बुद्धि से, बाबा कहते हैं ना कभी कभी बिल्कुल प्लेन बुद्धि बन के बैठो, जस्ट दिल खोल के ओपन हार्ट बाबा के सामने कि बाबा जो हूं जैसे हो तुम्हारी हूं और आगे मुझे क्या करना है उसके लिए आप गाइडेंस दो। तो कभी कभी ऐसे डीप योग में भी हमको रियलाइजेशन होता है, हमको महसूस होता है कि इस ये कमी है या फिर मुझे थोड़ा सा यहां पे थोड़ा जैसे एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। तो कहेंगे कभी कभी बाबा की टचिंग भी होती है क्योंकि बाबा बहुत दयालु है और वो जब बाबा देखते हैं कि बच्चे में सीखने की आगे बढ़ने की लगन है तो बाबा भी खींचता है आगे। तो जब हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल शांत और प्लेन भगवान के सामने रखते हैं तो ऊपर से बाबा भी सपोर्ट देता है, बुद्धि में एक रियलाइजेशन की शक्ति देता है। तो बिना कुछ किए योग में बैठे और फीलिंग आया कि हाँ, नहीं तो क्या होता है कि मैं अपने बल पे चल रही होती हूं। अपने बल से चलना इंपॉर्टेंट है, अपना रियलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, पर बाबा और बाबा की शक्ति, बाबा की बुद्धि मेरे से तो कई गुना पवित्र है। तो इसलिए बाबा को सौंप देना और कहना बाबा आप बताओ आप मुझे क्या करना है, ये भी एक तरह से चेकिंग का रूप है। पांचवा और लास्ट, ये सबसे मुश्किल है, रेडी? अच्छा, बाबा कभी कहते भी है मुरली में मेरे पास आओ तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आज अपने शरीर छोड़ना हुआ तो आप सत्युग में कहां आते। अभी किसी के पास जाना और उनसे पूछना कि मैं कहां तक ठीक हूं और कहां कहां मेरी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए ना। अगर आप सेंटर में रहते हैं तो अपनी आप जा सकते हो अपनी बड़ी दीदी के पास और पूछे दीदी बताओ, कुछ भी बोलोगे तो मैं सुनने को तैयार हूं, कुछ भी बोलो। अच्छा दीदी छोड़ो, आपके जो साथी हैं, हिम्मत है जाके उनसे पूछे, आप बताओ, जो भी बोलोगे मैं रेजिस्ट नहीं करूंगी, आपको क्या दिखाई देता है मेरे अंदर। या अगर आप घर पे रहते हो, युगल है या माता पिता के साथ, उनके पास जाके पूछो, आप बताओ मेरे में क्या कमी है। लिख लो, अगर बता नहीं सकते हो बहुत लंबी कहानी बनेगी तो अच्छा लिख लो, पॉइंट्स ही लिख लो, है ना। तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि हम एक दूसरे के पास जाएं और उस फेथ, उस विश्वास से जाएं कि वो ऑनेस्टली बताएंगे, देखो ये आपके अच्छे पॉइंट्स हैं, यहां थोड़ी कमियां हैं। खास करके अगर हम बड़ों के पास जाते हैं तो उनका क्या जाता है ना, वो तो प्यार से बताएंगे कि आप थोड़ा सा यहां अटेंशन देंगे तो आपकी भलाई है ना। तो ये फिफ्थ पॉइंट है स्व चेकिंग का। हम कहते हैं स्व की चेकिंग, तो आप पूछ रहे होंगे यहां तो अपनी चेकिंग तो मैं नहीं कर रही हूं, मैंने किसी और के ऊपर छोड़ दिया। पर एक्चुअली क्या है कि उस इंटेंशन से जब हम किसी के पास जाते हैं, मेरी नीयत जब इतनी साफ होती है कि मैं सिर्फ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जाती हूं, तो इसी में मेरा कल्याण है, यही मेरी पुरुषार्थ है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, जब कोई हमको बोलता है ना, आपको ना थोड़ा सा चुप रहना चाहिए था इस सिचुएशन में ना, आप थोड़ा शांत रहते ना तो सिचुएशन अपने आप ढल जाता, तो हम क्या कहते हैं, आपको मालूम नहीं है, आप तो पहली बार ही आ रहे हो ना इस घर में या इस सेंटर में या वर्क प्लेस में, आपको रोज रोज सहना पड़ता है ना, तो आप भी हमारे जैसे करते, तो हम आप डिफेंसिव बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, एडवोकेट बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं। इसलिए जब मैं बिल्कुल हैंड्स अप करके किसी के पास जाते, अच्छा बताओ जो बोलोगे मंजूर स्वीकार करती हूं, बताओ। एक बारी मैं एक सेंटर में गई थी, बताऊंगी नहीं कौन सा सेंटर, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कौन भाई बहन। तो वहां जो रहते थे, एक भाई था वहां रहता था, उस देश को संभालता है, तो वहां रिट्रीट कराया, क्लासेस कराई। फिर जब मैं जाने लगी लास्ट डे पे, तो भाई ने बोला बहन जी आप 5 मिनट बैठेंगे? मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी बड़े, ज्ञान में भी मेरे से ज्यादा टाइम बाबा के पास रहे। तो मेरे से पूछा, बहन जी आप बताओ जो आपने देखा पिछले एक हफ्ते में, तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज नजर आए जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। तो मुझे बहुत अंदर टच हुआ कि सब कुछ करने के बाद फिर ऐसे क्वेश्चन पूछना, और वो भी अपने से कोई छोटा छोटी हो तो और ही हिम्मत चाहिए होती है ना। मैं कुछ भी बोल सकती थी, खैर नहीं बोला क्योंकि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, पर पूछना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए 5 फॉर्म्स ऑफ चेकिंग है, और अगर हम रोज एक विधि अपनाते हैं तो उसमें हमारी स्व उन्नति है। क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, ज्ञान सुनना तो बहुत अच्छी चीज है, पर ज्ञान एक यंत्र है, ज्ञान कुल्हाड़ी है, जैसे शैलू भाई ने बताया ना कहानी में, उस कुल्हाड़ी को हमको यूज करना है, ज्ञान को यूज करना है। मुरली एक आईना है, अगर आपके घर में चार पांच आईने हैं, शिष्य हैं, पर आप उनमें देखो ही ना, तो शक्ल कैसे लगेगी? चलो अभी पांच मिनट के लिए हम अपने अंदर झांक के देखें। ज्ञान एक यंत्र है और मुरली आईना है। तो जैसे मैं बता रही थी, अगर आपके घर में बहुत सारे आईने शीशे हो, बाथरूम में भी, बेडरूम में भी, कई लोग तो अपने मेन लिविंग रूम में भी बहुत सुंदर सा आईना रखते हैं, पर आप अगर उसमें देखो ही ना, तो क्या फायदा हुआ? शक्ल कैसे लगेगी? फिर क्या होता है, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो और लोग कहते हैं, अरे आज बाल बना के नहीं आए क्या? जरा नहीं साफ किया है, दाग लगे हुए हैं। तो या तो मैं अपने को देखूं, अपने को ठीक करूं, या और लोग, मतलब ड्रामा, मुझे ठीक करने के लिए आएंगे। तो लाइफ में, जिंदगी में जब भी कोई विघ्न आते हैं, कोई ऐसे अड़चन आती है, तो किस लिए आती है? मुझे कुछ सिखाने के लिए आती है ना। तो उसको अगर हम फास्ट ट्रैक करना चाहेंगे, तो मुझे खुद को पहले से ही दिल दर्पण में, आईने में देखना होगा। जब हम वो होमवर्क नहीं करते हैं, तभी ड्रामा से, या जिंदगी कह लो, या और आत्माओं से हमको कुछ सुनने को मिलता है। और उस टाइम, उस वक्त, उस घड़ी में क्या करती हूं? जब आप आईने में देखते हो और आपको दिखाई दे कि यहां पे सारा खाना लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो? मुंह को साफ करते हो कि हथौड़ा लेके आईना को तोड़ने लगते हो? हाँ, श्योर। अगर कोई आपको आके बताए कि आपको ना थोड़ा सा चुप रहना चाहिए था, आपको ये चीज नहीं खरीदनी चाहिए थी, आपके पास ऑलरेडी है ना, आपको आके कोई बोले, तो आप क्या कहते हो उस टाइम? बड़े आके कोई इशारा दे के, देखो हाँ, इस एरिया में आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, तो ये आईना ही हुआ ना, तो आप क्या करते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं? क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर किया, तो फिर वो बार बार, जब भी देखोगे आईना में, वही चेहरा नजर आएगा ना। तो एक व्यक्ति से नहीं सुनोगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। मेरी खुद की एक्चुअली एक मेरा अपना अनुभव है कि हर एक आत्मा के अंदर, बाबा तो कहते हैं पांच विकार है, पर मेनली हमारे अंदर एक या दो मेन विकार होते हैं, है ना? जो संघर्ष होता है ना आत्मा की पवित्र होने के लिए, है तो पांच विकार, बट मेन लीडर्स जो है ना, इन पांचों में से एक या दो ही होंगे। आप अपने अंदर झांक के देख लो, जब भी कोई कठिनाई आती है ड्रामा में, मोस्टली हमारे अंदर वही बार बार एक ही कमी है जो हमको तंग करती है। तो इसलिए अगर हम उस पे अटेंशन डालेंगे तो बाकी के जितने भी उसके साथी है ना, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप चुप हो जाते हैं। पर उस एक को पहचानना, उस एक को पकड़ना, उसमें मेहनत है। तो इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं, मुरली सुनते सुनते नोट करो अपनी नोटबुक में, कल से चाहे लिखते हो चाहे यहां नोट करते हो, जो भी है कोई ऐसा पॉइंट नोट करो जो दिन भर आपके लिए आईना बन के रहे। ताकि उस दिन की चेकिंग उस पॉइंट के आधार पर हो, और हर रोज दूसरा पॉइंट लेना है। उससे क्या होगा, आप अपने को पहचान भी पाओगे कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है। बाबा हमको कहते हैं ना, चार्ट रखो, शाम को सोने से पहले चार्ट रखो। तो ये भी एक प्रकार का चेकिंग ही है, पर अगर होमवर्क किया हो तभी तो चेकिंग होगी। अगर दिन भर आपने नॉर्मल डे बिताया और उसमें आपने बिल्कुल साक्षी होकर देखा नहीं कि डिस्टर्बेंस अंदर कहां से आई, तो रात को भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि इस सिचुएशन में मुझे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आई, कुछ ऐसी थिंकिंग थी। रात को जब चार्ट लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं कि बस लिख के फिर बाबा को दे दे, बाबा ये ऐसे नहीं। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं ना, तो पादरी होते हैं ना, प्रीस्ट होता है, तो उधर बैठता है, बीच में एक दीवार सी होती है और यहाँ पे आम आदमी बैठते हैं और फिर पूरा कॉन्फेस करते हैं हफ्ता भर में क्या क्या गलत किया, ठीक है, जैसे भगवान को बता रहे हो कि अच्छा फिर बाहर चले गए फिर वो ही गलतियां। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करें बाबा के साथ, रोज रात को बाबा ये ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ठीक है हो गया, चेकिंग कर ली, पर फिर क्या। चेक के साथ बाबा क्या कहते हैं, चेंज। चेक बगैर चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए स्व की चेकिंग क्यों करते हैं, कैसे करना वो तो मैंने बता दिया, पर क्यों करना है, क्योंकि चेंज बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने अंदर चेंजेस बगैर हम कर्मातीत स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए सिर्फ अंदर का चेंज जो मैं जानूं, वो चेंज तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। मेरे एक्चुअल बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, लोगों को ऐसे फील होना चाहिए कि रियली आप जो थे आज जो हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप किसी को मिलो 5 साल बाद और वो बोले कि ओह यू हैव चेंज सो मच, तो ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। चलो और कोई बोले ना बोले, मेरे अंदर ही फीलिंग आना चाहिए कि देखो इस सिचुएशन में अंदर मेरी डिस्टर्बेंस चलती थी, अभी डिस्टर्बेंस कम हो रही है या है ही नहीं। अच्छा, इसलिए मैं अभी आपको एक पॉइंट, एक थोड़ा चेकिंग का पॉइंट देती हूं। तो जस्ट शांत में बैठ के सोचो, एक ऐसे सिचुएशन सामने लाओ जिसमें आप थोड़ा डिस्टर्ब होते, ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला सिचुएशन नहीं, छोटा सा बार बार होता रहता है और आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा इरिटेशन, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अपने ब्राह्मण कुल के अंदर, चाहे बाहर दुनिया में, और कुछ नहीं तो जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक जब बहुत खराब होती है, कोई गलत रीति से चलाता है, कट करता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, अपने मन में लाइए और अपने को साक्षी होकर देखो कि कैसे आप अंदर फील करते हैं, आपके अंदर डिस्टरबेंस कितना होता है, ऐसे छोटा सा वेव होता है कि बहुत बड़ा वेव होता है, आप ही जानते हैं। अच्छा, फिर अपने से पूछो कि अगर बाबा होते उसी सिचुएशन में, अगर कोई दादी होती, आपकी फेवरेट दादी, जो भी दादी थी, दादी प्रकाशमणि जी, जानकी दादी, गुलजार दादी जी, अगर वो उसी सिचुएशन में होते तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते, वो कौन सी शक्ति यूज करते। कौन से गुण अमल में लाते। क्योंकि वो तो जरूर शांत रहते ना उस सिचुएशन में, उनके अंदर तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, तो किस गुण और शक्तियों के आधार पर उनके अंदर वो शांति स्थायी रहती। आया सबको जवाब? बताने की जरूरत नहीं है, ये कोई कन्फेशन का टाइम नहीं है, बस अपने अंदर चेकिंग। तो चलो यही पॉइंट लेकर समझो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप प्रैक्टिस करें कि अगर मेरे अंदर यही फीलिंग्स आ गई तो मुझे वही नेगेटिव फीलिंग को, अभी आपको समझ में आ गया ना उसका ऑपोजिट पॉजिटिव फीलिंग कौन सा है, तो मुझे उसको चेंज करना है उस ऑपोजिट फीलिंग में। जब तक हमारी चेकिंग में ऑनेस्टी नहीं होगी, जब तक मैं सच्चे दिल से चेक नहीं करूंगी तो कोई चेंज ही नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, चाहे आपके अंदर कितनी भी बुराइयां ना हो, नेगेटिविटी नहीं हो, बुरे संस्कार ना हो, अगर दिल सच्चा है, मतलब नियत साफ है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने को चेंज करना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अगर डीप ऐसी फीलिंग हो अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं से बाबा ड्रामा को यूज करके बाबा आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति या साधन या मुरली या किसी तरह से बाबा आपको सपोर्ट, मदद देंगे। ये एक नियम है, क्यों? कि जो ऑनेस्टी है ना, वो एक तरफ से अंदर का दरवाजा खोलता है। जब तक हम कहते हैं ना कि मैं ठीक हूं, मैं राइट हूं, तो मैंने स्व चेकिंग का दरवाजा समझो बंद कर लिया है, क्योंकि स्व चेकिंग के लिए, चेंज के लिए मुझे पहले ये मानना ही पड़ेगा कि मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं पर अभी भी थोड़ी सी मैल है। कोई है इस कमरे में, इस ऑडिटोरियम में, जो हाथ ऊपर खड़ा करके कह सकते हैं कि नहीं हम तो कर्मातीत बन चुके हैं? है कोई? अच्छा 90% तक कोई पहुंचे हैं, 90% प्यूरिटी? नहीं। अच्छा 80%, 70%, नॉट इवन 50%? अच्छा, तो ये बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप सब सेल्फ चेकिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि जो सेल्फ चेकिंग करेंगे अपने आप ही समझ जाते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचना जहां बाबा हमको लेके जाना चाह रहे हैं बहुत ऊंची मंजिल है, जहां ओम शांति, मैं शांत आत्मा हूं, मैं एट पीस हूं। एट पीस मतलब कुछ भी हो जाए, अंदर कोई मूवमेंट नहीं, अचल, अडोल। हम समझते हैं कोई बड़ी समस्या हो जाए तो भी अचल अडोल रहना बड़ी चीज है। मैं तो कहूंगी छोटी छोटी बातों में अचल अडोल रहना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है तो इमीडिएटली ओ बाबा, और फिर अपने आप ही ना जैसे बुद्धि स्थिर होती है, बाबा की मदद मिलती है तो कोई ना कोई सलूशन निकल ही आता है। पर जो रोज रोज जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उनमें अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करना, मैं शांत हूं, कोई मूवमेंट नहीं। वो रियल प्रैक्टिस है जो हमारा घर है ना, निर्वाण धाम कहते हैं ना उसको, जिसमें कोई वाणी नहीं। एक्चुअली हम जब समझाते हैं तो वाणी का अर्थ सिर्फ आवाज नहीं। अगर आप में से कोई इंजीनियर है या साइंटिस्ट है तो आपको मालूम होगा कि आवाज है क्या, वेव है, साउंड वेव्स कहते हैं ना। तो एक्चुअली निर्वाण धाम का मतलब, मैं तो यही समझती हूँ, इसका मतलब ये है जहां पे बिल्कुल अंदर कोई मूवमेंट ना हो, ना संकल्प हो, ना कोई फीलिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट स्थिरता पूरे वातावरण में, बस स्थिरता। इसलिए जब हम योग लगाते हैं बाबा से, रियल योग लगाते हैं, तो मन में ऐसी स्थिरता लाते हैं जिसको बाबा बीज रूप अवस्था कहते हैं, जहां बिल्कुल स्टेबिलिटी, नो मूवमेंट। और जितना हम उसको प्रैक्टिस करते हैं बैठ के डीप योग में, उतना ही कार्य में हम उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, बीज रूप अवस्था की महसूसता होती है, तो एक संस्कार है ना, तो उस संस्कार को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। कौन सा संस्कार है वो? वो संस्कार है एट पीस, ट्रू पीस, रियल शांति, ताकि हमारे आसपास कुछ भी हो जाए, कितना भी मूवमेंट हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, हम एक शांति का रियल स्तंभ बने। दादी गुलजार जी को तो आप में से बहुतों ने देखा होगा, तो दादी की एक विशेषता थी कि दादी के करीब भी कोई आते थे ना तो उनको क्या महसूस होता था। शांति कहना भी मुझे बहुत लाइट लगता था, एक एक प्रकार का जैसे ना बिल्कुल डीप स्थिरता की फीलिंग। हमारे बहुत सारे गेस्ट आते थे अबू धाबी से जो इतने ज्ञानी योगी आत्माएं नहीं थी, और बहुत सारे प्रश्न लेके आते थे, तो हमने एक युक्ति सीख लिया था को दादी के पास लेके जाए तो जैसे दादी के आसपास एक ऐसी ऑरा थी, हा? लाइट की ऑरा थी, तो जैसे आप उसके अंदर आओ तो आत्मा अपने आप ही शांत। इसलिए बाबा से भी जब कोई ज्यादा प्रश्न पूछते थे ना, मतलब जब हमसे पूछते थे तो बाबा के सामने हम कहते थे चलो जाके बाबा से पूछो, बाबा के सामने तो बोलती बंद। उसी प्रकार से दादी अपनी एनर्जी से उस आत्मा को ऐसे अनुभव करवाती थी कि उस अनुभव में ही उनको जवाब मिल जाता था। और अभी समय ऐसा आ रहा है कि दुनिया में हलचल तो है ही ऑलरेडी, पर हलचल बढ़ेगी। इसका मतलब हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऐसी वेव्स, हलचल की वेव्स, चाहे आपके देश में आपके गांव में ऐसे लग रहा होगा कि नहीं हम तो ठीक है, कोरोना भी चला गया है और सब नॉर्मल है, सब ठीक है। कभी कभी ये होता है ना, ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर दुनिया में जब प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हलचल चल रहा होता है, तो वो तो हर एक कोने तक फैलती है। इसलिए चाहे आपको अंदर अभी इस घड़ी फील हो रहा हो कि नहीं, दुनिया में जो मूवमेंट हो रहा है ना वो बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमको क्या करना है, उसका रिस्पॉन्स क्या देना है। जितना बाहर हलचल उतना अंदर शांति स्थिरता, और उस शांति तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी बहुत डीप और बहुत ऑनेस्ट चेकिंग करनी होगी। अभी लास्ट में मैं एक कहानी सुनाऊंगी। तो एक बुद्धिस्ट मंक था, मंक समझते हैं ना, जो बुद्धिस्ट लोगों का एक वो ऋषि कह लो या, है ना। तो काफी सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, परंतु उसके अंदर जो क्रोध था ना वो कम ही नहीं होता था। कभी कंट्रोल कर करके चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, पर अंदर उसका एक्सप्लोजन पटाखों की तरह चलता रहता था ना। कुछ भी होता था तो उसको गुस्सा चढ़ता था। बहुत ट्राई किया उसने, खाना पीना बंद किया, अपना बुद्धिस्ट चांटिंग वगैरह जो करते हैं ना वो भी ट्राई किया, गुफा में जाके रहा। आखिर उसने कहा मेरे से नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। और जब भी वो वापस समाज में आता था तो वो ही गुस्सा। तो एक दिन उसने सोचा ठीक है, मैं रोज ना, छोटा सा उसके पास नाव था, बोट, बस उसमें जाके एक तालाब के बीच में जाके अपना शांति से 2-3 घंटा मेडिटेशन करूंगा, और अगर मैं रोज ऐसे करूंगा तो कम से कम मुझे 2-3 घंटे की तो शांति मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि एटलीस्ट मुझे 2-3 घंटे का जो मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए कम से कम वो तो होगी, क्योंकि धरती पे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो कुत्ता, बिल्ली, कोई व्यक्ति, कोई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं ना, बहुत लोग हमारे आसपास। तो मैं जाऊंगा तालाब के बीच में, शांति शांति। तो एक दिन वो नाव में बैठ के अपना आंख बंद करके अपनी मेडिटेशन कर रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, ठक, कोई आके उस बोट को, उस नाव को धक्का देके उसको, मतलब मेडिटेशन से या पता नहीं सो भी रहा होगा, उसको उठाया, तो उसको आंख खोलने से पहले ही गुस्सा चढ़ गया, ये कौन है। एक ही जगह थी जहां पे मैं आराम से, शांति से अपना मेडिटेशन करता था अकेले में, किसने आके मुझे डिस्टर्ब किया। तो आंख खोला और रेडी था, बस तैयार था कि अभी मैं, तो देखा तो एक एम्प्टी बोट आके टकरा गई थी। उस दिन उसने रियलाइज किया, जो भी मेरे अंदर अशांति है वो और किसी कारण से नहीं है, ना कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, ना ड्रामा रिस्पॉन्सिबल है। जो भी मेरे अंदर अशांति है वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा अपना ही संस्कार है। तो क्योंकि हमने बाबा को प्रॉमिस किया है ना, वायदा दिया है ना कि बाबा हम कर्मातीत बनेंगे, बाबा आपकी तरह बनेंगे, आपने प्रॉमिस किया है ना बाबा को, वायदा किया है ना पक्का। तो इसलिए कभी भी चेकिंग करते वक्त बाहर की परिस्थिति, ड्रामा, किसी व्यक्ति, किसी भी चीज को दोषी नहीं बनाओ। इतनी ऑनेस्टी से अपने अंदर परिवर्तन लेके आना अभी, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो ड्रामा का जो अगला सीन होगा ना वो और ही तंग करने वाला आएगा। तो अभी ये जो आपको टाइम मिला है मधुबन में, घर जाके कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन होता है, जो भी होता है, लाइफ जो थोड़ी स्लो चल रही है, उसका यूज करो, उसका उपयोग करो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कहते हैं ना, अपने से बातें करो, आज मुरली में बोला ना, अपने से बातें करो, अपने अंदर झांक के देखो। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा था अगर आपके अंदर कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, तो मैं लास्ट 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स, किसी का है कोई प्रश्न? पूछ सकते हो, आइए। अगर आप माइक में बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। थैंक यू।
ओम शांति दीदी। दीदी एक दो कैरेक्टर्स हैं जो जिनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक उनके लिए कभी भी गुड फीलिंग्स नहीं आती हैं, उनका चेहरा देखते ही ना मतलब थोड़ा सा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है।
होपफुली वो कैरेक्टर्स यहाँ तो नहीं बैठे।
नहीं, नहीं,
नहीं, चलो अच्छा।
बट वो थोड़ा कैसे करूँ उसको, मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे शुभ भावना शुभ कामना करना है, बट वो अंदर से हो नहीं पाता है।
तो थैंक यू। तो हमारे सबके लाइफ में ऐसे एक दो कैरेक्टर्स तो हैं, एक दो नहीं तो 4-5 तो होंगे ना, ये तो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वही कैरेक्टर्स हैं जो हमको आईना बन के दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चीज अभी रही हुई है। अभी अगर हम देखें तो गुस्सा क्यों चढ़ता है, क्यों आता है किसी को? एक ही कारण है जिस गुस्सा का, वो क्या है? कि मेरी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, वो उस अनुसार बाहर का जो ड्रामा है, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे सिचुएशन है, उस अनुसार नहीं चल रहा है। मैं एक्सपेक्टेशन ये रखते हूं और बाहर से मुझे इतना ही दिखाई देता है रिटर्न। चाहे मैं किसी व्यक्ति से कि चलो आप अच्छे नहीं बनो तो कम से कम न्यूट्रल तो बनो ना, बुरा तो मत करो, और उनका बार बार वही संस्कार नजर आता है। या कभी कभी ड्रामा में ऐसे होता है ना कि हम सोचते ड्रामा चलो इतना सहयोग तो ना दे पर थोड़ा सा तो दे, ड्रामा से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अपेक्षा रिटर्न अगर वो मैच नहीं कर रहे हो ना तो गुस्सा चढ़ता है। और कोई कारण है ही नहीं गुस्सा का। आप अपने अंदर झांक के देखो, जब भी गुस्सा आता है तो मेरे अंदर फीलिंग ये है कि ऐसे होना चाहिए, हो तो ये रहा है। अभी आप बताओ जो दुनिया में हो रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो? किसी व्यक्ति को चेंज कर सकते हो? तो क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करनी पड़ेंगी ना, मुझे उसको थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझना है कि अभी हम तमो प्रधान दुनिया में है। आई एम डीलिंग विद अ वेरी तमो प्रधान वर्ल्ड। और तमो प्रधान दुनिया के साथ अगर हम डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो अपेक्षा रख ही नहीं सकते हैं ना। अगर आपके पास फ्लैट बैटरी है और आप उसको किसी चीज में डालो और वो चले ही ना, तो वो किसकी गलती है? बैटरी की गलती है कि उस रेडियो की गलती है या मशीन की गलती है? किसी की भी गलती नहीं है। बैटरी फ्लैट है तो फ्लैट है, व्यक्ति ऐसा है तो है। इसलिए मैं गुस्सा करने से के बगैर के बावजूद, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, मैं अपने को यही समझाती हूँ, ये फ्लैट बैटरी है, फ्लैट बैटरी है, फ्लैट बैटरी है। खराब बैटरी नहीं है, गलत नहीं है, फ्लैट है। जब कोई फ्लैट होता है ना तो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि वो हाई एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल चल ही नहीं पाएगा। उससे क्या है ना, अपने अंदर दया आ जाती है। घृणा के बावजूद, सॉरी, घृणा के अगेंस्ट दया आ जाती है। उस दया भाव से फिर हम शुभ भावना, शुभ कामना पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जस्ट रिमेम्बर, सबके लाइफ में कोई ना कोई है। दूसरी बात है, वो हमको कुछ अपने बारे में सिखा रहे हैं, वो आईना बन के आ रहे हैं। तो हम आईना को गलत क्यों बोले? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने को बदले ना, कि हम हथौड़ा लेके बोले कि इस आईना को मैं खत्म कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा।
ओम शांति दीदी। मेरा थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन ये आता है कि जब हम पढ़ाते हैं ऑफिस में से, यूनिवर्सिटी में हैं हम, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वो डीन है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एज में भी बड़े हैं, पोस्ट भी बड़ी है, बट वो एक बैक बाइटिंग और ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है, और कई बार आप एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं लंच के ब्रेक में बैठ के। मेरे साथ उसने गलत नहीं किया, लेकिन मुझे सुनने को मिल रहा है कि वो पर्सन ऐसा है। हम जब उससे मिलेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीड कर दी गई है। तो स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया तो मेरे अंदर किसी तरह का किसी के लिए कोई भी बायसनेस नहीं थी, लेकिन सुन सुन के कि ये ग्रुपिंग अलग है, वो ग्रुपिंग अलग है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और थोड़े बहुत बिटर एक्सपीरियंस होने के बाद में मन में कचरा आ गया, मतलब वो डस्टबिन जैसा। और फिर जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम इन सब चीज़ों से हट के सब बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से डील करें, लेकिन आप जब हर समय किसी की कमियों को सुन रहे हैं, एक जो लंच ब्रेक में जो लोग करते रहते हैं बातचीत, तो वो आपके मन में जा रहा होता है दीदी। वो चीज़ कैसे फिल्टर की जाए कि हम न्यूट्रल होकर डील कर पाएं ऑफिस के क्योस को, और बड़े हैं उनका रिगार्ड भी रखना है और उन्हें हम टोक भी नहीं सकते कि आप ऐसे बातें नहीं करो क्योंकि ये निगेटिव है, व्यर्थ है, वो भी लंच के टाइम में या किसी भी टाइम पे रिगार्ड भी रखना है और हमें वो चीज से बचना भी है, तो कैसे इस चीज को कैसे डील करें?
तो हम सभी एक ही दुनिया में रहते हैं, है ना, और इस दुनिया में कोई परफेक्ट तो है ही नहीं। तो जब अज्ञानी आत्मा इम्परफेक्शन को देखते हैं तो उनको बहुत मजा आता है, है ना, लोगों के बारे में बात करना, चर्चा करना, बैक बाइटिंग, ये तो नॉर्मल है। हम भी करते थे जब अज्ञानी थे, तो हम भी करते थे ना, सभी करते थे ना, इट्स नॉर्मल। पर जब मेरे आसपास ऐसे हो रहा होता है तो बाबा ने हमको कौन सी शक्ति सिखाई है जो हमको अमल करना है, कौन सी शक्ति, जो टॉर्टोइस होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं टॉर्टोइस को, कछुआ, हाँ, वो क्या करता है, पावर टू विथड्रॉ, ना, उसको मालूम है डेंजर। तो जैसे ही हमारे आसपास ये गॉसिप शुरू होता है ना, आज ही बाबा ने बोला ना फालतू की बातें, तो हमको क्या करना है? अगर आपके पास बैग में हेडफोन्स है ना, तो हेडफोन्स डाल दीजिए, कुछ सुन लो अच्छा सा, नहीं भी सुन रहे होंगे ना तो डाल के बस बैठ जाना। आप प्रिटेंड करो कि चलो मेरे कानों में अभी हेडफोन्स आ गए हैं, बाबा के अच्छे अच्छे गीत सुन रही हो, उनको देखते जाओ, रिस्पॉन्ड मत करो। क्यों? अगर रिस्पॉन्ड किया तो वो मेरा कर्म हुआ, और सुनते सुनते आज जैसे हमने बात की ना, अपने को चेक करो, मेरे अंदर कोई मूवमेंट आ रही है, तो आप अपना टेंशन अंदर ले लो, आप अंदर बिजी हो जाओ, बाह्य रूप से आप वही हो, वो बोल रहे हैं सुनो मत, चेक करो अभी मेरे को कैसे लग रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, चेक करो कि जो अंदर का मन का डस्टबिन है खुला है कि बंद है। आप अपने में अंदर बिजी हो जाओ, भले आप वहां रहो क्योंकि रहना तो पड़ता है ना, पर मेन चीज आप ये चेक करो कि मेरे अंदर एक भी छोटा सा कण अंदर ना जाए। अच्छा, जो कचरा आ गया अब क्या करें, इतना कचरा अंदर बैठ गया, बिंदी कचरा का डिब्बा ही नहीं बंद हो रहा है, पूरा भर गया है ना। तो हमको मालूम है कि जो भी कचरा है वो सबके संस्कार ऐसे हैं, तो अगेन वो फ्लैट बैटरीज है, बोलने वाला भी फ्लैट बैटरी है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी फ्लैट बैटरी है। तो बाबा कोई दे दो ना सारा कचरा, बोलो बाबा देखो ये आपके बच्चे हैं, नॉटी बच्चे हैं, हम करें क्या, मेरा काम तो है ही नहीं उनको चेंज करना, मेरा काम है अपने को साफ रखना। इसलिए हमको मालूम है, रियली हमको मालूम है कि दुनिया में बहुत कचरा भरा हुआ है, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दुनिया का कचरा सारा साफ करना, पहला फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको साफ करना। इसलिए आप एक एक चीज को लिख लो कागज पे, लिख के बाबा को दे दो, बाबा के कमरे में जाओ, चाहे पत्र के रूप में चाहे पॉइंट्स के रूप में, और जैसे लिख रहे हो ना कागज पे ऐसे फील करो कि मैं निकाल के कागज पे डाल रही हूं, तो यहां साफ हो गया। अगर बाय चांस फिर से ख्याल आ गया, ओ रह गया ना, तो फिर से लिख लो कागज पे, फिर से जाके बाबा को दे दो। जब तक आप हल्के रहेंगे और आपको अंदर उन्हीं लोगों के प्रति कहने वाला और जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है दोनों के प्रति शुभ भावना, टेररिस्ट और जिसके बारे में बात कर रहे, दोनों दोनों ही टेररिस्ट है ना।
ओम शांति दीदी।
ओम शांति।
टेररिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। आई ऑल्सो प्रैक्टिस दैट यू जो दादी ने बोला हुआ है, बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन डिफेंस जो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा लॉ ना हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, हम बॉर्डर पे खड़े हैं और हमें फायरिंग करनी है, तो तुम बताओ ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। तो मैंने बोला ये ना तो अच्छा कर्म है ना ये बुरा कर्म है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो बोलते हैं क्लास क्यों लगाते हो तुम लोग। सो व्हाट आई शुड आंसर कि वो फायर बैक ना करे। और सॉरी दीदी, इसमें ही दूसरा क्वेश्चन ये भी है। आई एम अ मेंटोर, आई मेंटोर स्टार्टअप्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनको कार्मिक अकाउंट समझाना, हम उनको सब समझाते हैं लाइबिलिटी असेट, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज वो कहते हैं आई डोंट नो, हम पुराने जन्म का लाइबिलिटी अभी कैसे आ रहा है वो बताओ। और फिर वो उनको लॉजिकल बाबा का ज्ञान वो उनको सब समझ में नहीं आता। सो कैन यू गिव सम पॉइंट्स सो यू नो वी कैन हुक दैट।
यू नो कहानी बहुत लंबी है, हम जो देख रहे हैं वो कहानी का अंत है, लास्ट चैप्टर है। पर एक्चुअली कोई भी आप आजकल की दुनिया का मैटर ले लो, कोई भी सिलसिला ले लो, तो कहानी तो बहुत सदियों से चलती आ रही है। चाहे आप मिडिल ईस्ट की कहानी ले लो, चाहे आप कनाडा अमेरिका की कहानी ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो कहानी बहुत लंबी है। कहां से शुरू होती है? और हमको मालूम है कि हर कहानी देह अभिमान से शुरू होता है, मींस डिफरेंसेस से शुरू होता है। इंग्लिश में कहते हैं अस एंड देम, मतलब हम ऐसे आप ऐसे, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आया मींस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई। जैसे ही मैंने महसूस किया कि मैं ऐसे हूं तुम ऐसे हो, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अभी इतनी डीप कहानी आजकल के नॉर्मल यू नो अज्ञानी लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम पूरा सृष्टि चक्र नहीं समझेंगे और डिटैच होकर उसको देखेंगे नहीं, तब तक हमको लगेगा कि ये पार्टी राइट है ये रॉन्ग है। पर ड्रामा में कोई है राइट एंड रॉन्ग? ब्रिजमोहन भाई जी का एक बहुत फेमस सेइंग है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। जिसको हम गलत मान रहे हैं वो भी ड्रामा में तो राइट है। ये इतनी घुई चीजें
हम उनको नहीं समझा
सकते, नहीं समझा सकते, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ।
मुझे लगा कहीं मुझ में अभी उतनी काबिलियत नहीं आई कि शायद मैं उन्हें ये समझा ना पाऊं।
जब आत्मा में समझने की शक्ति आएगी वो अपने आप ही अपना सिर झुका के कहेंगे मुझे मालूम नहीं आप ही बताओ। फिर हमको लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ना कि लेसन नंबर 10। पहले समझो मैं कौन, फिर समझो मेरे अंदर कमी कहां से आई, फिर समझो दुनिया की हालत ऐसे क्यों बनी, फिर समझो उसका समाधान क्या है।
दीदी वन मोर क्वेश्चन आई हैव। जैसे आपने बोला लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बदली, तो मेरे साथ भी ये हुआ कि पहले मुझे लगता था जो बाबा बोलते हैं बैलेंस करके चलो, बैलेंस लाइफ, इम्पॉसिबल लगता था मुझको, बट आई हैव अचीव्ड इट टू अ सर्टेन लेवल। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, पहले मेरे को था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट माई ओन असेट्स, मेरे को एक अपना खुद का घर बनाना है, एक खुद की गाड़ी, ये दो नेसेसिटी है जो मेरे पास होनी ही चाहिए। बट क्योंकि अभी तो समय बदल चुका है, तो अगर मेरे को ये थॉट अभी आता है मैं ये संकल्प लेके आऊं, तो क्या ये संकल्प लाना और फिर उस चीज को क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू द टाइम राइट होगा?
ड्रामा हम सबको जगा रहा है
जी,
ड्रामा हमको न्यू रियलाइजेशन तक लेके आ रहा है ना, इसलिए तो हो रहा है ये सब कुछ। ये बाहर की दुनिया को जगाने के लिए नहीं हो रहा है।
मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं अभी, मेरा आज से 3-4 साल पहले ये संकल्प था कि अभी तो आई एम स्टेइंग विद माय फैमिली, बट कभी ना कभी तो मुझे अलग होना ही है इनसे, तो अभी अगर मैं वो थॉट लेकर आऊं कि मुझे अपना खुद का एक घर बनाना है, तो क्या वो थॉट अभी के टाइम के अकॉर्डिंग राइट होगा?
I don't know your circumstances, no? Sabka.
Okay, it depends on the circumstances, you say.
Everything depends on circumstances. The best person to give you advice is your center in charge, your zone in charge. Because वो जानते हैं ना आपका exact position क्या है, how many are dependent on you, who are you dependent on? ये बहुत सारी बातें आती हैं.
Okay, thank you, दीदी. Thank you so much.
तो last question, क्योंकि आपका अभी break है ना. तो ऐसे करें क्योंकि टाइम हो चुका है तो आई डोंट माइंड टॉकिंग टू एनीवन इंडिविजुअली परंतु ब्रेक टाइम भी बहुत जरूरी है अभी बैलेंस की बात हुई ना बैठे रहोगे तो ये भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए थोड़ा सा ने तो इसलिए हम लोग एक मिनट बाबा को याद करके खत्म करते हैं क्लास एंड देन आई कैन सिट विद एनीवन नो प्रॉब्लम मैं तो यही हूं आप भी अभी दो तीन दिन यही है ना तो कभी भी आके आप So we can do it after 1 minute yoga. Is it okay? Is everyone okay with that? Theek hai? Okay. Om Shanti.